اب اس کے بعد انفرادی چیزوں میں آیت نمبر 11 سے لے کے سورت کے آخر تک، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیر منہم، اے ایمان والو نہ تمسخر اڑایا کرے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، شاید کہ وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا، کیونکہ عسى ان یکن خیر منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور کیا نہ کہیں۔ دوسری چیز، ولا تلمزو انفسکم، اور نہ عیب لگاؤ ایک دوسرے پر، یہاں نمبر 2 لگا لیجیے آپ۔ پہلی چیز مذاق اڑانے سے روکا گیا، عورتیں عورتوں کا، مرد مردوں کا۔ دوسری بات ہے عیب نہ لگاؤ۔ تیسری چیز، ولا تنابزو بالالقاب، نہ برے القاب سے کسی کو بلاؤ، یعنی نام بدلنا۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، یعنی اللہ نے تو اتنے پیار سے یا ایھا الذین آمنوا کہا، اور تم اپنے آپ کو دوبارہ پھر فسوق کی طرف لے کے جا رہے ہو۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس جو لوگ باز نہیں آئیں گے اس روش سے تو وہی بے انصاف ہے۔ پہلی چیز ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، دوسری چیز برے نام لگانا، عیب لگانا، اور تیسری چیز برے القاب رکھنا۔ چوتھی چیز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو دور رہا کرو بکثرت بدگمانیوں سے، یعنی دوسرے کے بارے میں بدگمان نہ ہوا کرو، کیونکہ ان بعد الظن اثم، کے بعض گمان گناہ ہے۔ پانچویں چیز، ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو۔ اور چھٹی چیز، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی بعض کی ہیبت بھی نہ کیا کرے۔ اور دوسرے کی غیبت کرنا کیسا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو اسے مکروہ سمجھتے ہو، ایک دن پرانا گوشت تو کھا نہیں سکتے، مردہ گوشت کو کیسے کھاؤ گے؟ تو لہٰذا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، کیونکہ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یہ جو آیتیں تھیں ان کا تعلق زبان سے تھا۔ آگے ایک چیز جو ہے وہ نسب ناطے پہ فخر کرنے کی ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ یہاں اگر ایک ایک کر کے ساری چیزوں کا تھوڑا سا ہم خلاصہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کا حکم دے رہے ہیں۔ پہلی چیز ہے تمسخر۔ تمسخر سین خارا سے ہے، لا یسخر قوم من قوم، تو یہاں دیکھیں یسخر کے بعد من کا صلہ جو آ رہا ہے نا، تو جب بھی سخرہ کے بعد من آتا ہے تو اس سے مراد ہے مذاق اڑانا، ٹھٹھا اڑانا، اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اسی سے لفظ سخری یہ آیا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا بھی چند صورتیں پہلے، ٹھٹھا پن، مت کسی کو حقیر جانو، تم کیا سمجھتے ہو کون ہے، اس میں نقلیں اتارنا، ہنسی اڑانا، کسی کا ایسا تذکرہ کرنا کہ جو دوسروں کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ مذاق اڑانا جو ہوتا ہے انسان زبان سے بھی کرتا ہے، نقلیں اتار کر، منہ چڑھانا، اس کے لباس، رفتار، گفتار، بولنے، حتیٰ کہ آنکھوں کے اشاروں سے بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ آنکھ مار دیتے ہیں لوگ کسی کو، کوئی غلط کام کرتا دیکھ کے، اچھا کام کرتا دیکھ کے، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری چیز اس میں اینگل میں دیکھیے کہ عورتوں کی بات الگ کی گئی، مردوں کی الگ، کیوں؟ نمبر 1، حکم کی اہمیت کی وجہ سے۔ عام طور پہ تو عورتوں اور مردوں کو ایک ہی جگہ صیغہ تغلیب کے تحت مذکر سے لے لیا جاتا ہے، لیکن یہاں دو کو الگ کیوں کیا؟ تو پہلی وجہ حکم کی حکمت، دوسرا یہاں ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے جس پہ غور کیجئے کہ ایمان والوں کی مجلسیں عورتوں کی الگ ہوتی ہیں، مردوں کی الگ، کیونکہ یہ مذاق اور ٹچکر پن جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی جگہ سب بیٹھے اور دیور بھابھی کو لگا رہے اور بھابھی دیور کو لگا رہی ہے، تو اس سے مسلمانوں کی مجلسیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ وہاں مکس گیدرنگ نہیں ہوتی، اور کہاں پھر ڈرامے اسٹیج کے اوپر ڈرامے سجا کے ایسے کام کیے جائیں کہ جس میں سب دوسروں کو برا بنایا جائے، اچھا بنایا جائے، یہ بالکل بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور یہ آیتیں اتنا لوگوں پہ اثر کرتی تھیں کہ عمر بن شرحبیل کہتے ہیں، اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں خود بھی ایسا نہ ہو جاؤں، یعنی اتنی ہنسی والی بات ہو پھر بھی میں ایسا کروں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کسی کتے کے ساتھ بھی میں استہزاء کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں کتا نہ بنا دیا جاؤں. یہ تفسیر قرطبی کی روایتیں. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مذاق اڑاتے ہیں. کسی کا ازار بند لٹک جائے تو مذاق، کچلتا چلتا گر پہ تو مذاق. دیکھیے جاہل قوم ہوتی ہے نا، وہ ہر بات پہ مذاق اڑاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. عموماً مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ اس کی تین بڑی وجہیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، اختلاف ہو. جس سے آپ کو اختلاف ہوتا ہے آپ اس کی ہر بات پہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، دینی جسمانی کوئی نہ کوئی اختلاف ہوتا ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے کسی کا مذاق اڑانے کی کبر. آپ خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا وہ ہر آتے جاتے پہ کمنٹ. یا میں نے بعض دفعہ دین پڑھے وہ کبھی دیکھا ہے، پڑھ چکے نا دین، اللہ نے تھوڑی صلاح کر دی ہے، بٹ دیکھو کیا پہنا ہوا ہے، دیکھو کیسے بول رہی تھی، کیا کھا رہی. آپ کو اللہ نے کمنٹیٹر کب سے بنایا؟ میں آپ سب کو بھی یہ نصیحت کروں گی کہ کبھی کسی شادی سے ہو کے آئیں، منگنی میں آئیں، دعوتوں میں جائیں، بازاروں میں جائیں، گاڑی میں بیٹھے باہر لوگوں کو دیکھیں، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. کیوں؟ کہ اس کو بیچارے کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے آپ کا رویہ فرق ہونا چاہیے. تیسری چیز ہوتی ہے حسد. حسد کی وجہ سے دوسرے کی خوبی اچھی نہیں لگتی، انسان چاہتا ہے کہ اس کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل کرے، تو لہٰذا اس طرح ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. دیکھیے پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں، برابر ہوتی نا تو آپ کام نہ لے سکتے ان سے. دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے اختلافات رکھے، جسمانی شکل، مال، ذہن، خاندان، سب کچھ فرق رکھا تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. جیسے آپ دیکھیں کوئی چیز مضبوط جوڑنی ہو نا تو ڈفرینٹ سائز کی، ایسے وہ جیسے بچوں کے کھیلنے کے پزلز ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈی ادھر نکلی ہوئی ہے، کوئی ادھر ہے، جو ہی اس کا پیس ساتھ جوڑتے ہیں وہ فٹ ہو جاتی ہے. اور اگر چکور پورے پورے ٹکڑے ہو تو آپ جوڑیں گے کیسے؟ بس یہی مثال ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس دنیا میں جو ہمیں فرق دکھتا ہے لوگوں میں وہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے ہے. اس لیے کوئی ایسی بات کرنا کسی دوسرے کو تکلیف دینا ہے. پھر دوسری چیز دیکھیے، تلمیزو کا لفظ ہے، لمس تیر لگانے کو کہتے ہیں، عیب لگانا. کیونکہ لوگ مذاق جب کرتے ہیں نا تو تیر ہی مار رہے ہوتے ہیں، عیب جو ہی کرنے کو لمس کہتے ہیں. اتنا بڑا عیب ہے کہ اللہ نے ایک پوری سورت نازل کر دی، ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ الذی جمع مالا وعددہ. تو آنکھ یا سر کے اشارے یا زیر لبائستہ سے کسی کی عیب چینی کرنے کو کہتے ہیں لمزہ فلان، اجازت نہیں ہے. کوئی کسی کے عیب نہ گنوائے، اس کی خامیوں کو نہ اچھالے، اس کی کمزوریوں کو نہ اچھالے. ہر بندے میں کوئی نہ کوئی عیب تو ہوگا نا، جب اس کو ہم باہر کر دیں گے تو دوسروں کے ہم کھولتے کھولتے بعض دفعہ اپنے لیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کریں، ولا تلمیزو انفسکم، قابل غور نقطہ، اپنے اوپر نہ لگاؤ. کیونکہ جب کوئی کسی پہ عیب لگاتا ہے تو اصل میں وہ اپنے ہی مسلمان بھائی پہ یا اپنے ہی جیسے انسان پہ لگاتا ہے، تو اس کا اپنا ہی اس میں نقصان ہوتا ہے، یہ درست چیز نہیں ہے. کسی نے کہا کہ وفی کا عیوبن، تیرے اپنے ہی اندر اتنے عیب ہیں. ولن ناس آئین، اور لوگوں کی بھی آنکھیں ہیں، یعنی تمہارے اپنے عیب اتنے ہیں، دیکھو لوگ بھی تو تمہارے دیکھتے ہوں گے نا، تو تم کسی کے دیکھو گے تو تمہیں بھی کوئی دکھائے گا. کسی کو آپ آئینہ دکھائیں گے تو اس آئینے میں آپ خود بھی ہوں گے. پھر ایک وہ بادشاہ ظفر تھا، اس کا بھی ایک شعر ہے کہ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا. اپنے آپ کو دیکھے. حضرت عمر بھی کہا کرتے تھے، حاسبو قبلن تو حاسبو، لوگوں اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ دوسروں کا ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی کو لنگڑا کہنا، لولا کہنا، کانا کہنا، اندھا کہنا، یہ بھی تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. عموماً عیب کب لگتے؟ نمبر ایک جسمانی عیوب، جو ابھی میں نے بات کی، کسی کو کچھ کہنا. ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں صرف ٹھگنی کے لفظ بولے تھے، چھوٹے قد والی. اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ تم نے اتنی کڑوی بات کی ہے کہ اگر دنیا کے سمندروں میں ڈال دی جائے تو اس بات سے وہ سارا پانی کڑوا ہو جائے. ہم سوچیں. دوسرا عیب جو لگتا ہے وہ دین کی وجہ سے لگتا ہے. اس کی بھی مثال ازواج مطہرات میں ملتی ہے. حضرت صفیہ کو آپ نے ایک دن روتے ہوئے پایا، کہا کیا بات ہوئی؟ کہا اللہ کے نبی، آپ کی بیویوں میں سے کسی نے مجھے یہودیہ کہہ دیا، یعنی یہ یہودی نسل سے تھی. تو آپ ہنسے، آپ نے کہا تم نے آگے سے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا باپ نبی، میرا چچا نبی، میرا شوہر نبی. باپ حضرت موسیٰ، چچا حضرت ہارون، और शौहर नबी सल्लम थे। तो ये बात सुन के आप हंस पड़ी। इसी तरह एक ऐप लगता है किसी के गुना का आर दिलाना, किसी को देखा का चोर आ गया, चीज ठीक कर लो, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को गई। इसके बारे में एक हदीस सुन लीजिए। नबी सल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान को किसी ऐसे गुना पर आर दिलाए जो वो छोड़ चुका है, तौबा कर चुका है, तो अल्लाह ने अपने जिम्मे ले लिया है कि इसको इसी गुना में मुब्तला करके दुनिया और आखरत में रुसवा करे। यानी ऐसा शख्स मरेगा नहीं जब तक वो काम खुद नहीं करेगा। आपको क्या पता कौन कहाँ किस वक्त तौबा कर चुके। बाद साहबी कहते हैं कि ये आयात हमारे लिए नाजिल हुई, जब नबी सल्लम मदीना में आए तो अक्सर लोग ऐसे थे जिनके दो दो तीन तीन नाम मशहूर थे, तो कुछ ऐसे नाम थे जो लोग खुद अपने लिए पसंद नहीं करते थे, तो हम उसी से जब पुकारते थे तो फिर ऐसी आयतें नाजिल हुई तो हमने उसको रोक लिया। अब सवाल पैदा आता है कि क्या तीसरी चीज जो आ रही है, वला तनाबजू बिल अलकाब। अलकाब लकब से है। तनाबजू किसी के ऊपर ऐब लगाने को कहते हैं। इसका मतलब कि किसी को किसी लकब से मुलव्वस करना, इसको नफ्स कहते हैं। अमूमन ऐसा लकब होता है जो किसी की मजम्मत के लिए हो और उसको पसंद ना हो, और अरबों के कल्चर में ये बहुत आम चीज थी, मना कर दिया गया। मसलन देखिए, किसी अंधे को हाफिज कहना आम मारूफ बात है ना, किसी को कुछ नहीं आता तो कह दिया देखे जी मुफ्ती साहब बैठे हैं, किसी को मोटा देखा तो कुछ कह दिया छोटा कहा। इस पर अगर आप डिटेल से सुनना चाहें तो जो कुरान की किरने में हमने किया हुआ है, काफ़ी मैंने 10-10, 15-15 मिसालें मुख्तलिफ चीज़ों की अमली ज़िंदगी से दी थी कि लोग अमूमन पता भी नहीं उनको चलता और वो ये काम कर रहे होते हैं। इसलिए बस सहाबा के बाज़ मुहद्दिसीन के लकब हमें मिलते भी हैं जो अच्छे नहीं भी होते, लेकिन वो बुरे नहीं लगते क्योंकि वो उनके लिए हो चुके। तो ऐसी चीज़ों से बहरहाल रुकना चाहिए। कोई किसी को ऐसे ही कह देता मोटी, ओ ठिगनी इधर आ, ओ मोटी किधर हो, ओ इधर आओ, ओ अकल के अंधे, ओ गधे, ओ घोड़े, ये अच्छे लफ्ज़ नहीं है। अपने लिए आज ये लिख लें कि ऐसी बातों के साथ मैं जन्नत में नहीं फिर जा सकूँगी। जैसे कहीं ना कहीं कोई जगह लेते हैं तो उसकी होती है ना शर्तें, तो जन्नत की शर्त यह है कि ये ख़राब चीज़ें हमारे अंदर से निकलें। ऐसी चीज़ें दूसरों को कम और हमें ज़्यादा नुकसान देती हैं। तीसरी चीज़ आप देखिए कि इसमें जो आई है वो है इज्तनेबू कसीरम मिनज़न्नी। ये बड़ी अहम है, बदगुमानियों से बचो। इज्तनेबू का लफ्ज़ जीम नून बा से जंब, जंब कहते हैं पहलू को, इसी से लफ्ज़ जुनाबत भी है। शिद्दत देखिए ज़रा, जो कैफियत वहाँ जुनाबत की है वहाँ इसी चीज़ से रोका गया। ज़न का लफ्ज़ अरबी में गुमान के लिए भी आता है और यकीन के लिए भी आता है, अज़दात में से है, कभी यकीन के मानों में आता है कभी उसके अपोजिट में आ जाता है। और इस्म हर वो काम या अमल जो कार खैर या सवाब से पीछे रखे, नेकी से दूर रखने वाला। अलिस्म मा हाक बिही मिन नफ्सिक। इस्म वो है जो तुम्हारे नफ्स में खटके। इस्म की जमा असाम होती है और इस्म का ताल्लुक जो है दिल से होता है, अमल की निस्बत की तरफ। कल्ब असीम कहते हैं गुनाहगार दिल को। इसका मुतज़ाद है कल्ब सलीम, सलामत दिल, पीछे हम पढ़ चुके। तो कल्ब असीम दिल की ऐसी कैफियत जिसमें दिल नेकी से दूर हो जाए, उर्दू में आप कह लें मुर्दा दिल, दिल मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा। जबकि कल्ब सलीम सांप के डसे हुए शख्स की तरह तदबीरें करने वाला, तड़पने वाला दिल है, हर बुराई से अपने आप को रोकता है। तो कौन से गुमान जो इंसान को नेकी करने से रोकते हैं, इसका एक पूरा चेन एक्शन होता है। सबसे पहले बदगुमानी होती है अल्लाह ताला के साथ, ये लिख लीजिए, ये तो हराम है, मेरे साथ अल्लाह ने कभी अच्छा ही नहीं किया, मुझे अल्लाह ने कहा माफ़ करना। आप बताएं जिसका अल्लाह के बारे में बदगुमान है वो तो इबादत में मज़ा आएगा, कुर्बानी करने को दिल चाहेगा, सदका देने को, माल खर्च करने को दिल चाहेगा। और मुनाफिकों और काफिरों का मसला क्या है कि वो अल्लाह के बारे में बदगुमान होते हैं। दूसरे बदगुमान जो वो नबी सल्लम के बारे में होते हैं, आपके बारे में लोगों को बदगुमान किया जाए, आपकी शख्सियत को मसख किया जाए, बार दफ़ा आपको एक बड़ा ऐसा शख्स पेश किया जाए कि आपकी बातें तो दूसरे समझ ही नहीं सकते, इसलिए अब दूसरों को ही इसकी ज़रूरत है, ये भी जायज़ नहीं है, पसंदीदा नहीं है। तीसरा बदगुमान होना कुरान के बारे में, ये किताब तौबा तौबा इतनी मुश्किल, जो पढ़ता है वो तो पता नहीं कौन छुरी बन जाता है, और इस किताब पे तो आज के दौर में अमल ही नहीं हो सकता, इस तरह की बातें करना। चौथा गुमान होता है मोमिनों के बारे में, ये मुल्ला, इनको अल्लाह पूछेगा। ये नेक बन गई है ना, किसी को कुछ समझती नहीं है। और फिर चौथा बदगुमान होना तमाम इंसानों के बारे में, किसी मजहब या किसी जमात किसी इलाके के बारे में। पहले से आप बुरा सोच लेंगे तो आप फिर उनके बारे में अच्छी कैसे सोचेंगे। जो लोग हज से आते हैं जरा उनको देखा करें, फुला काली औरतें, फुला हबशी, फुला ऐसा, फुला ऐसा, फुला इंडिया से आया वो तो दुश्मनी होगा, फुला अमेरिका से आया वो तो पता नहीं मुनाफिकी होगा। मना कर दिया। किसी के बारे में बदगुमानी ये पहला फुट स्टेप है जो पड़ता है, तो उसके बाद इंसान दूसरी से दूसरी, तीसरी से तीसरी चीज़ों में पड़ता है। इमाम इब्ने कय्यिम कहते हैं कि अपने ख्यालों को वॉच किया करो, वरना वो तुम्हारे आइडियाज़ बन जाएंगे, और अगर आइडिया ख़राब हो गया तो वो तुम्हारी डिज़ायर बन जाएगा, और अगर वो डिज़ायर बन गया तो वो तुम्हारी आदत बन जाएगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा वो एक्शन बन जाएगा, तुम वही काम करने लगोगे जो के करते थे। कुछ लोग वाकई बदगुमान होते हैं, जब बदगुमानी आदत बन जाती है वो बंदा कभी खुश नहीं रहता, ना माँ से खुश, ना सास से खुश, ना बेटी अच्छी लगी, ना बहू अच्छी लगी, ना भाई कल अच्छे थे, आज शोहर भी नहीं अच्छा हुआ। कुछ लोगों को आप देखें, उनका गम क्या, हर दौर में मुझे अच्छा नहीं मिला कोई। आप देखेंगे ना तो असल मसला उनका अपना, वही विंडो साफ करने वाली बात है। ये कैसे हो सकता है कि आपको हर रिश्ते में लोग बुरे ही मिले? तो ये कौन से लोग होते हैं? बदगुमान होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन भोला भाला होता है, हुस्नु ज़न्नी मिन हुस्निल इबादा, अच्छा गुमान इबादत में से है, बुरा गुमान गुनाह है। आपने फरमाया कि गुमान से बचो क्योंकि अक्सर गुमान झूठ होते हैं। तो ऐसे तमाम मामलात में इंसान को खुशगुमान रहना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला ने हर इंसान को कमी के साथ पैदा किया है, उसको बर्दाश्त करें, उसकी खूबियों पर नज़र रखें, अपनी खामियों को देखें, दूसरे खुद ही अच्छे लगेंगे। जिसके बारे में सोच ख़राब होती है ना, वो प्यार भी करे आपसे तो आपको अच्छा नहीं लगता। और इसी तरह से मनफी सोचों का असर इंसान को बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ों पे ले जाता है। क्या करें, जिसके बारे में बदगुमानी हो उससे मुलाकात कर लें, कोऑर्डिनेशन करें, तोहफ़ा दे दें, बात कर लें, किसी के ज़रिए बात कर लें कि कोई ऐसी बात मेरे दिल में आ रही है, आप मेरी इसलाह कर दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ऐसी चीज़ें फिर दूसरे के भी दिल में आपके लिए नरमी पैदा करेंगी। अल्फत में ईमान की खेती की बात हुई है ना, तो सूरत हुजरात जो है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि अब इस खेती में फूल लग रहे हैं। इखलाक क्या है? फूल है, पत्ते हैं। जैसे पत्ते सोसाइटी के अंदर ग्रीनरी देते हैं, पत्ते ऑक्सीजन देते हैं, वहाँ ठंडक होती है, इसी तरह एक सच्चा मोमिन जब भी कहीं से गुजर जाता है ना तो वहाँ का माहौल खुशगवार होता है। एक मोमिन का कहीं होना और ना होना, इट मेक अ डिफरेंस, ये बहुत बड़ा फ़र्क डालता है। ये नहीं हो सकता कि एक मोमिन कहीं हो तो उसके इर्द गिर्द वाले उसके ईमान से ठंडक ना पाएं, उसके ईमान से खुशी महसूस ना करें, ये नहीं हो सकता। ईमान छुपी हुई चीज़ ही नहीं। आप इसको ये कह लें कि ईमान पुदीने की गठी है, छुपा सकते हैं? चोरी कर सकता है कोई? किसी को कह सकते हैं मेरे पास नहीं है, हालांकि अंदर रखा होगा? बस ईमान भी नहीं छुपता, और इखलाक ईमान की चुगली कर देता है। आप कह सकते हैं कि हमारा लोगों के साथ मामला, अखलाक, उनके साथ डीलिंग्स, ये हमारे ईमान की चोरियां होती हैं। अंदर ईमान है तो पता लग जाएगा वो ईमान छुपा हुआ है, और अंदर ईमान कोई नहीं है तो आप जितनी मर्जी लफ्जी बातें करते कराते रहें लोगों को, आप ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कुछ दिन हम सारे बेवकूफ़ बना सकते हैं हर एक को, ज़्यादा दिन नहीं बना सकते। अब आप देखिए कि इसके बाद जो अगली चीज़ हमारे सामने आ रही है, जिसमें जन और बदगुमानी और लोगों के बारे में बुरी बातें सोचने के की बात करके हमें आगे एहसास दिलाएगा, वो क्या है? वला तजस्सुसु, तजस्सुस ना करो। तजस्सुस का लफ्ज़ हमने सूरत यूसुफ में पढ़ा था, तहस्सुस के लफ्ज़ में, तहस्सुसु यूसुफ, बेटो जाओ और यूसुफ को तलाश करो। फ़र्क क्या है? जब हा के साथ आता है तहस्सुस अच्छे मानों में आता है, खोज करना, परखना, जैसे आप इसको रिसर्च का नाम दे सकते हैं आज की ज़ुबान में, इल्म की बुनियाद पे आप देखें तो वो होता है तहस्सुस। लेकिन तजस्सुस होता है ये, इससे मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो तजस्सुस मना किया गया, तहस्सुस मना नहीं किया गया। अब तजस्सुस में क्या चीज़ें आती हैं, कैसे हैं? पहली बात है कि किसी मुसलमान के ऐबों का सुराख लगाना, उसके पोशीदा हालात को कुरेदना, उसको देखना क्या हो रहा है, क्या उनके हालात हैं, शोहर बीवी का क्या मामला है, इनकी बेटी इतने दिन से घर में क्यों है, ये खाते कहाँ से हैं, ये गाड़ी कहाँ से आ गई, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हर किस ज़रूरत नहीं इस। नबी सल्लम ने फरमाया कि लोगों के जाहिर पर क्यास करो, अगर तुम लोगों के अंदरूनी मामलात को कुरेदोगे तो तुम उनको हलाक कर दोगे। क्यों? आप इसको अपने जिस्म की मिसाल से लीजिए, बाहर बज़ाहर हम सब साफ सुथरे कपड़े पहने, खाए पिए, हर एक की शक्लें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन अच्छे ही लगते हैं ना हम लोग बाहर से, लेकिन हमारे अंदर क्या है? बदबू, गंदगी है, खून है, पीप है। कभी किसी भी ऑपरेशन थिएटर के पास से गुजर के देखें तो आपको एहसास होगा कि हम अंदर से क्या चीज़ है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए कि जिस तरह ये ज़ाहरी तौर पे जिस्म है ना, इसके अंदर कितनी गंदगियाँ भरी हुई हैं, इसी तरह इखलाकी जिस्म के अंदर भी कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियाँ नहीं हो सकती मोमिन के अंदर, फिर मर जाएगा, फौरन ख़त्म हो जाएगा उसका ईमान, कत्ल हो जाएगा उसका ईमान। जैसे अंदर जिस्म में कोई बड़ी बीमारी हो ना, तो बस फिर 4-6 महीनों की कहानी रह जाती है, फिर जितना देखना है उसको देख लो, जितनी बातें करनी है कर लो, वो जाने वाला है। इस तरह जिस ईमान वाले के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ जाती हैं ना, फिस्क की, फजूर की, जिना की, बदकारी की, फहाशी की, औरयानी की, और अल्लाह की नाफरमानियां कर कर के भी बंदा खुश रहे, तो समझें कि अब ये ईमान तो रुखसत हुआ, वो है ही कोई नहीं जिसको आप बुला रहे हैं। एक और जुमला नोट कीजिए, कुरान ने जितनी नेकियों का इंसानों को या मुसलमानों को हुक्म दिया वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह कर दिया। तो जिसके अंदर ईमान ही कोई नहीं, वो कहता है ये कॉल मेरे लिए है ही कोई नहीं। अगर आप गौर से सोचें तो इस एक जुमले में आपको एक बहुत बड़ी लोगों की मिसकंसेप्शन का जवाब मिल जाएगा, जो कहते हैं लोग मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ, लोग तुमने मुझे ऐसा समझा, तुम्हारा ख्याल अल्लाह मुझे नहीं माफ़ करेगा। क्यों? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही कोई नहीं। ईमान की कॉल जब आती है ना, तो फिर बंदा अपना मुहासबा करता है, वरना इंसान हमेशा उस कॉल को दूसरे के लिए समझता है, और सच बात है वो उसकी नहीं होती। ऐसे जैसे यहाँ कोई बैठ के पुकारे किसी को, मसलन कोई नाम ले लेते हैं, ओ खतीजा, मैं आवाज दूँ खतीजा खतीजा, कोई हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से। क्यों? आप फौरन सोचेंगे मैं तो खतीजा हो ही नहीं। बस ये है, जिस दिल में ईमान नहीं होता ना, इसलिए वो ईमान ना होने की वजह से अपने आप को या अय्युहल्लज़ीना आमनू में लेता ही कोई नहीं। आप सर पटकते हैं, हाय इनको नहीं पता, इतना बताया, इतना सुनाया, इतनी बातें की, क्यों नहीं पता चल रही, वो है ही नहीं, वो अपने आप को नाम ही नहीं दे रहे। तो कहाँ पहले ज़रूरत है बात करने की? ईमान पे। इसीलिए पीछे अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत तरीके से बता दिया कि अल्लाह ताला ने हब्बबा, अल्लाह ने पसंद कर लिया, हब्बबा इलैकुमुल ईमान। आपने एक चीज़ नोट की है, इस सूरत के भी आगाज़ में पहले ईमान की बात हुई, फिर ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, इसने मुज़य्यन किया इसको, किसको, इस ईमान को तुम्हारे दिलों में सजा दिया, संवार दिया। तुम बुंदे पहनते हो, तुम टीका लगाते हो, अंगूठियाँ पहनते हो ना, तो तुम सजते हो, अल्लाह ने तुम्हारे दिल का सिंघार या दिल की आराइश इस ईमान से कर दी। तो ईमान की वजह से अल्लाह सुबहान तआला ने किस तरीके से ईमान को सजाया, इसी तरह आप देखिए, करहु इलैकुमुल कुफ्रा, उसने मकरूह किया तुम्हारे लिए कुफर को। इससे क्या पता चलता है कि काफिर का दिल मकरूह होता है, अंधेरों में मलगजे अंधेरे हैं, वल्फसूक फिस्क है, नाफरमानी, हदों से गुजरना, ट्रांसग्रेशन, और वलिस्यान नाफरमानी। मैं सोचती हूँ सिर्फ इसे एक आयत नंबर 7 को अगर हम लिख के इस पूरी सूरत को साथ ले, आपको सारा दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ जाएगा। पहले ईमान होता है, उससे दिल सजता है, तो दिल में ये सारे जज्बात उभरते हैं, फिर इंसान अपनी इसलाह की फिक्र करता है, और जहाँ ये दो चीज़ें नहीं बल्कि तीन चीज़ें, कुफ्र, फुसूक और इसियान, ये तीन चीज़ें आती हैं, तो उसके बाद तो इंसान के जिस्म में, ज़िंदगी में सिर्फ खराबियाँ खराबियाँ, बीमारियाँ बीमारियाँ दिखती हैं। फिर वो अल्लाह के बारे में भी बदगुमान है, फिर उसका गुमान क्या होता है, देखना अल्लाह ताला ने मुझे माफ़ कर देना, तुम क्या समझते हो। एक छोटी सी चीज़ पढ़ के सुनाती हूँ, असल में ये टॉपिक ही ऐसे हैं कि एक मौजू हम कर लिया होगा ना, अगले में जाएंगे तो हम फिर पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि अखलाक गुंधी हुई चीज़ होती है। ये आप यूँ नहीं कर सकते, ये रखी हुई है गीबत का खाना, ये तजस्सुस रखा हुआ है, और यहाँ बदगुमानियाँ, नहीं, ये एक दूसरे के अंदर से निकलती हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी वो जो पजल्स होते हैं, एक के अंदर घुसी होती है ना, एक चीज़ होती है तो उसके बाद दूसरी भी है। यूँ देखें, एक के अंदर जा रही हैं उंगलियाँ, कुछ इधर है कुछ उधर है, तो हमें पलट पलट के पीछे जाना पड़ेगा। कि यहाँ जो बदगुमानी की बात हो रही है, तो एक अरबी की तफसीर है, उसमें लिखा हुआ है कि जन की 4 किस्में हैं, यानी गुमान, एक हराम है, دوسرا واجب ہے، تیسرا مستحب ہے، اور چوتھا مباح ہے۔ یعنی آپ اس ٹرمز کو سمجھ جائیں گے۔ حرام کون سا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بدگمانی رکھی جائے کہ وہ تو مجھے عذاب ہی دے گا، مجھے تو مصیبت میں مبتلا کرے گا، اس نے کہا مجھے معاف کرنا ہے۔ ہاں، ایسا شخص گویا کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت سے مایوس ہے۔ حضرت جابر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کو اس کے بغیر موت نہ آنی چاہیے کہ اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان ہو۔ اور ایک حدیث قدسی کے بھی الفاظ ہیں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ کرتا ہے۔ اب اس کو اختیار ہے کہ وہ کیسے میرے ساتھ معاملہ رکھے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس نے تو ہمیں ڈالنا ہی آگ میں ہے۔ ٹھیک ہے، بس اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایسے مسلمان جو ظاہری حالت میں نیک دکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے یہ کہنا، تمہیں کیا پتہ اندر سے کتنے کھوٹے ہیں، یہ بھی اس حرام کی زد میں آتا ہے۔ یعنی حرام، ایک اللہ کے ساتھ حرام ہے، دوسرا بندوں کے ساتھ حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ گمان سے بچو، کیونکہ گمان جھوٹی بات ہے۔ اور یہاں گمان سے مراد کسی مسلمان کے ساتھ بلا کسی مضبوط دلیل کے بدگمانی کرنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، جو کام ایسے جن میں کسی جانب پر عمل کرنا شرن ضروری ہے اور اس کے متعلق قرآن و سنت میں کوئی دلیل واضح موجود نہیں، وہاں ظن غالب ہو، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ مثلا چھوٹی سی باتیں ہیں، یعنی اب یہ دوسری قسم پہ ہم آگے، کہ واجب کون سا ہے؟ کہ جس میں آپ کو کوئی دلیل نہیں مل رہی کہ یہ کام ضرور کرو لیکن آپ کو پھر بھی کرنا ہے۔ مثلا کسی جگہ آپ نے کسی کوئی حادثہ ہوتے دیکھا، اب آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ گواہی دیتے ہیں، تو آپ کو دینی پڑے گی۔ ہاں، یعنی مقدمات کے فیصلے میں سقہ، سقہ کہتے ہیں مضبوط گواہوں کی گواہی کے مطابق فیصلہ دینا، کیونکہ حاکم اور قاضی جس کی عدالت میں مقدمہ دائر ہے اس پر اس کا فیصلہ دینا ضروری ہے۔ تو اس معاملے میں قرآن اور سنت میں تو کچھ نہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جج کی جو پوسٹ ہوتی ہے، جو گواہیوں اور حالات کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ دیتا ہے، پھر اس وقت اس کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ اس کو کرنی ہی پڑے گی۔ اگرچہ یہ امکان وہاں بھی ہے کہ کسی بھی اچھے آدمی نے اس وقت جھوٹ بولا ہو، اس لیے اس کا سچا ہونا صرف ظن غالب ہے اور اسی پر عمل واجب ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، مثلا قبلے کا تائیگر، یہاں سمت معلوم نہیں، آپ نماز پڑھنا چاہ رہے تھے، آپ کوئی شخص ہے بھی نہیں جس سے آپ پوچھیں، تو وہاں آپ اپنے ظن سے سوچیں گے سورج ادھر ڈوبا، ادھر سے نکلا، یہ کیا، تو یہ بھی ظن غالب کی بنیاد پر اس طرح سے آپ قبلے کو پڑھیں گے، قبلے کو تعین کر لیں گے، تو وہ اس میں آ جاتا ہے کہ یہ واجب ہے۔ اس کے بغیر آپ لوگ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ اس طرح کا کر لیں، نہیں بھی پتا تو ہم وہاں پڑھ لیں۔ اسی طرح تیسری چیز کیا ہوتی ہے، کسی شخص پر کسی چیز کی ضمانت دینا واجب ہو، اس کا ضائع شدہ، یعنی وہ ضائع شدہ چیز کی قیمت میں گمان کرنا۔ مثلا ایسے ہی ہے جیسے آپ ایئرپورٹ پہ گئے، آپ کا اٹیچی کیس کھو گیا، اب وہ آپ سے پوچھتے نا کلیم کتنے کا دینا ہے، کتنے کا سامان تھا، اب آپ نے ایک ایک چیز تو نہیں گنی ہوتی، تو ایسے وقت میں زن کر لینا، ایسٹیمیشن کر لینا کہ اتنا ہے اتنا ہے، تو یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، واجب ہے۔ پھر اسی طرح نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے، تین پڑھی تھی کہ چار پڑھی تھی، تو پھر جو آپ کا زن کہہ رہا ہے اس پہ عمل کر لیجئے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ ٹھیک ہے، اور زن غالب کو چھوڑ کر اگر یقین پر کام کریں تو پھر تین کو پڑھ لے اور چوتھی کو دوبارہ دہرا لے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو مستحب زن ہے وہ کیا ہے، کہ ہر مسلمان کے ساتھ نیک گمان کیا جائے، کبھی کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، اس پر بھی آپ کو پتہ ہے کہ ثواب ملتا ہے۔ سورۃ نور میں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کمنٹ سن چکے، لولا سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرن، کیوں نہیں جبکہ آپ نے حضرت عائشہ کے بارے میں یہ سنا تو مومن مردوں اور عورتوں نے اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھا۔ ایک صحابی نے بھی اپنی بیوی کو یہی کہا تھا نا کہ تم بتاؤ کہ تم عائشہ کی جگہ ہوتی تو یہ کرتی، کہا نہیں میں تو نہیں کرتی، تو کہا پھر تم سوچو ذرا عائشہ ایسا کر سکتی ہیں۔ کتنا پیارا کرائیٹیرین ہے، دوسرے مسلمانوں کو پرکھنے کے لیے پہلے خود کو دیکھو، تم کر سکتے ہو، تم نہیں کر سکتے تو تم نے دوسرے کو کیسا سمجھا۔ اسی طرح ایک اور چیز جو کہ کسی بھی انسان کے معاملے میں آتی ہے، مثلاً آپ کسی کو چور کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ ہے چور، اب آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں نا، کچھ ایسی چیزیں، تو ایسے شخص کو چور سمجھنا और बगैर उसके ऊपर कोई रिसर्च किए, तहकीक किए, इसके ऊपर भी इंसान को बस दफ़ा यकीन आ जाता है। मसलन कोई करता ही है चोरियाँ, मसलन आप देखिए एक औरत है वो फिल्मों में काम करती ही है। अब आप 10 मार्केट में उसकी फिल्में देख सकते हैं, 11वीं फिल्म के बारे में शुबा पड़ गया कि इसमें ये करती है कि नहीं, करेगी कि नहीं, कैसी है, नेक है कि बद है, तो आप उसके पिछले अमल पे बुनियाद बनाते हुए कह सकते हैं कि हाँ अगर इसको मौका मिलेगा तो ये गलत काम भी कर लेगी। ये छोटी छोटी मिसालें हैं, सिर्फ मुश्किल हो जाती है बात, इसलिए इसको छोड़ दें। लेकिन जहाँ आप तजस्सुस पे रहते हुए हम देखेंगे कि किस हद तक तजस्सुस किया जा सकता है, किस हद तक नहीं। पहली बात तो फिर वही कहूँगी कि आप कुरान की किरणें में से इसको सुने, वहाँ काफ़ी डिटेल है इसकी। लेकिन अभी खुलासे के लिए ये है कि तजस्सुस करते वक्त सोचे कि तजस्सुस की वजह क्या है, क्यों करूँ। बस आप देखिए कोई पुलिस के महकमे में काम करता है, ऑफकोर्स उसको तजस्सुस करना पड़ेगा। कोई INS के ऑफिस में काम कर रहा है आपके इधर, गालिबन उसको UDI में कोई काम करता है, अब उसका तो काम ही ये है ना, उसने तो देखना है कौन कब गया कहाँ गया, तो ये तजस्सुस किया जा सकता है जो किसी जॉब किसी चीज़ से रेलिवेंट है। उसके बाद आ जाती है चीज़ सबसे पहले इंसान के अपने घर वाले, क्या बच्चों का तजस्सुस किया जा सकता है। बच्चों का तजस्सुस आप एक ऐसी हद तक और उस वक्त करेंगे कि जिससे वो आपसे बदगुमान ना हो जाए। मसलन आप देखिए कि एक माँ जिसका बच्चा 5-6 साल का है, वो उसी वक्त से ही उसकी कॉपियाँ चेक करना, उसका बैग चेक करना, मेरे बच्चे ने किसी की पेंसिल तो नहीं ले ली, बिल्कुल कर सकती है, अभी शऊर ही नहीं, समझ नहीं। और एक माँ अपने बच्चे की तरबियत करते करते 12-13 साल तक जब वो हो जाए तो उसको यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है अब वो जहनी तौर पर इतना पुख्ता हो चुका है कि वो गलत काम नहीं करेगा, फिर नहीं करना चाहिए। याद रखिए एक बात, खुशबू नहीं छुपती ना, बुराई भी नहीं छुपती। एक शख्स ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में चोरी की, पकड़ लिया गया, हाथ काटने की सजा सुनाई गई, कहने लगा नहीं नहीं हजरत उमर मुझे माफ कर दे, ये मेरी पहली चोरी है। तो उसको दुर्रे लगवाए, कहा चुप कर, अगर ये तेरी पहली चोरी होती तो अल्लाह ताला इसको कभी खोलता ना। ये लिख लें बात, किसी का कोई जुर्म आपके सामने आए तो मान लीजिए ये पहला नहीं था, पहले अल्लाह ने पता नहीं कितने छुपाए, एक खोल दिया। ये अल्लाह का इंसाफ है, ये अल्लाह का रहम है, हमारे पहले गुनाह पे हमें नहीं पकड़ता। जो कहते हैं पहली चोरी पे पकड़े गए, पहली खयानत पे पकड़े गए, वो पहली नहीं होती, कम से कम भी वो दूसरी होती है। ठीक है, तो इस हद तक हाँ बच्चों से दोस्ती रखें। बेटा क्या है, चल सुनाओ इसका। मुझे तो बेहतरीन तरीका क्या लगता है, बच्चे घर आए ना तो चलो चलो खाना खाते हैं, टेबल पे बैठे, अच्छा चलो पहले आप सुनाइए सुबह से क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। बिल्कुल जायज़ है, सुनना चाहिए, आपका काम है, आपका फर्ज है। आप इसको प्रैक्टिकली इस तरह भी देख सकते हैं ना कि आप जैसे शोहर की बात करते हैं आप, अगर कि क्या शोहर की चीज़ों का तजस्सुस किया जा सकता है, कहाँ जाते हैं सुबह, बाकी जॉब पे गए हैं कि नहीं, किसी को मिलने तो नहीं गए, उनके टेक्स्ट उनकी चीज़ें ढूंढनी। देखिए कि जिस तरह शोहर की कोई चीज़ आपसे नहीं छुपेगी ना, इस तरह आपका उसका तजस्सुस करना उससे भी नहीं छुपेगा। ये बात लिख लें, हम अगर किसी का कोई तजस्सुस करते हैं ना उसको 1 मिनट में पता चलता है रिश्ते में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा। वो अगर ठीक है बिलफर्ज उसने कुछ नहीं किया तो कहेगा ये कैसी शक्की मिजाज औरत मुझे मिल गई, इसको कोई और काम नहीं, वो और गुस्से में आएगा। और अगर मिसाल है कि वाकई वो किसी और को मिलने जा रहा है ऑफिस में जाने के बहाने, तो फिर आप देखिए वो आपसे झूठ बोलेगा। तरीका कार क्या है, एतमाद पैदा करें, जिंदगी का हुसन एतमाद में। ये मैं और आप यहाँ आके बैठते हैं ना, हम इसे एतमाद पे आते हैं कि मैं जाऊँगी तो आप आके बैठे हुए, और आप इस एतमाद के साथ आते हैं कि आप आए तो आपको कुछ मिलेगा। एतमाद के बगैर रिश्ते नहीं निपते, और जहाँ रिश्तों में दरार आ जाती है ना बेतबारी की बेतमादी की, वहाँ जिंदगी अजीरन बन जाती है। और आज के दौर में तजस्सुस करना इतना आसान है। मेरा ख्याल है पहले दौर में तो कोई मर्द 10-10 साल से भी बुराई करते थे तो औरतों को नहीं पता चलता था ना, या वो कहती थी सब्र करते हैं हमें नहीं पता, हम तब ये होता था अच्छा किसी को भेज के देखते हैं ऑफिस में जाते हैं कि नहीं क्या करते। यकीन करें ये मशीन जो मेरे सामने बैठी है ना, आप इस मशीन को तजस्सुस का आला कह सकते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां सामने आती हैं, अल्लाह की पनाह। शौहर बीवियों के पासवर्ड ढूंढ लेती हैं, फेसबुक पे जाके उनका नाम डालती हैं, उनकी सारी सहेलियों के नाम आ जाते हैं। करें अब आप क्या करते हैं, फेसबुक जो ये फितना बुक के नाम से मारूफ हो रही है मुसलमानों में, सिर्फ आप किसी का मुझे ईमेल एड्रेस दें, सिर्फ आप एक ईमेल एड्रेस डालें, वो जिसका वो ईमेल है वो किसको मिलता है, किससे बात करता है, किसको लिखता है, वो एक दूध का दूध पानी का पानी। और मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो क़यामत की बात की ना कि कुल शैइन अख्सैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, हर चीज़ को हमने एक रोशन स्क्रीन में लिख दिया, ये क़यामत नहीं है ये आज की भी है, वहाँ तो है ही है इंशाल्लाह, दुनिया में भी खुलती है। तो एतमाद पैदा करें, और अगर आपको शक होता है यानी कई ऐसी कहानियां इस मौके पे अगर हम उस पर चले जाएं तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन इंसान को हाँ कहाँ तजस्सुस कर सकती है, और शक हो रहा है, अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं। ये हर वक्त मुस्कुराते ही रहते हैं अकेले में, ये इनकी नज़र थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने फ़ोन पे जाती है, ये इनको ऑफिस जाने का शौक़ बड़ा है, देर से आते हैं, फ़ोन किया ऑफिस में तो पता चला है नहीं, बाद में कर दिया। देखिए झूठे के मुंह में होता है ना, पीछे पढ़ लिए ना हमने बात, कि जो बंदे के दिल में होता है ना अल्लाह उसके चेहरे पे लिख देता है वो चीज़ें। तो लिहाजा जहाँ ज़रूरत है वहाँ तजस्सुस करें। बाकी रह गई बात बाकी लोग, मसलन अब ये शोहर और बच्चे तो एक बहुत मोस्ट सीक्रेट चीज़, इसी तरह बीवी, ये बहुत अहम बात है। कुछ मर्दों के मिजाज में शक होता है, और मैंने फील किया कि जहाँ बीवी ज़रा सी मर्द से किसी लिहाज में अच्छी होती है, समटाइम एज डिफरेंस होता है, बीवी यंग होती है मर्द बूढ़े होते हैं। बाद लोग तो ये सोच के बूढ़े मर्दों को लड़कियां अपनी दे देते हैं ना कि बड़ा खुश रखेंगे इसको कि जवान बीवी मिलेगी इसको, कभी ये जुल्म ना करें, इल्ला माशाल्लाह कोई तकवा की बंदिश लगी हुई है, वो इतना पीस के रखेंगे उस लड़की को, वो कही किधर, वो आई किधर, वो देखी किसने, मिली किससे, कॉम्प्लेक्स होगा। फिर एक और वजह होती है कि मर्द वाजबी शक्ल का होता है, औरत खूबसूरत होती है, फिर औरत पढ़ी लिखी है मर्द नहीं। आप अमूमन ऐसी कहानियां पढ़ेंगे, पढ़ी लिखी औरतों की शादियां अनपढ़ों से हुई तो वो जाहिल मर्द निकले, वो उन पे शक भी करते हैं, उनको मारते भी हैं, वो अंदर का गिल्ट होता है। पहले रिश्तों को ठीक तरीके का करें। इंसान जो है वो मशीन नहीं है कि चलो जो भी है जिसका जोड़ लगा दिए, इंसानों के दिल दिमाग भी होते हैं। लेकिन जो मर्द अपनी बीवियों पे शक करते हैं ना, फिर ऐसे हालात में बीवी को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे मजीद ही घर में खराबी पैदा हो। मसलन कुछ मर्दों को पैसों का बड़ा शक होता है, ये मैके भेजती है, ये बहनों को दे देती है, कि उसको सीधी तरह बता दो मेरे हैं तो मैं दे दूंगी, मैं आपको पूछ के बताऊं या दो के दूं, ये मेरे हैं मैं आपके मैं नहीं दूंगी। मुझे ऐसे लगता है कि तजस्सुस वाले इंसान के साथ रहने का एक जो बहुत कामयाब तरीका है ना, बी फेयर। देखिए ना मैं सुनूंगी गलत ना मैं करूंगी, मेरे साथ ना ऐसी बात करिएगा, मैं आपकी एक लिमिट में रहती हूँ, आप भी मेरी लिमिट में रहे, यानी ये जितना आप तजस्सुस में देखना घुसना, जस्सा जीम सीन सीन गुदगुदी करने को कहते हैं, पीछे भी आपको बताया था, यानी इस तरीके से गुदगुदी होती है कुछ लोगों को, और कुछ को तो सारी दुनिया का तजस्सुस होता है। देखो दादी क्या कर रही हैं, देखो फूफो क्या कर रही हैं, खाला की तरह, अच्छा चचा क्या कर रहे हैं, देखो जरा अबू टीवी पे क्या देख रहे हैं, वो देखो अम्मा किससे बातें कर रही हैं, ये तो बच्चों को किल करने के बराबर है। कभी बच्चों से ये ना करें।